ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार एक शहर में एक ऐसे आदमी की मृत्यु हो गई जिसको कोई संतान नहीं थी, तो लोगों ने सोचा कि इसकी प्रॉपर्टी को एक मंदिर बना के उसमें सफल कर देंगे। लेकिन देखते ही देखते उसके इतने रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, किसी ने कहा ये हमारा चाचा था, किसी ने कहा ये हमारा फूफा था, किसी ने कहा ये हमारा मामा था, और उन सब लोगों ने उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा लिया और मंदिर बनाने की योजना फेल हो गई। ऐसा एक उदाहरण बाबा ने 1980 की एक मुरली में दिया है। बाबा ने ये उदाहरण इसलिए दिया कि जब दुनिया में किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके वारिसदार पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों ने रावण को तो मार दिया, लेकिन रावण के इतने वारिस हैं, छोटे बड़े सूक्ष्म। रावण के मरने के बाद वो सब आ जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता कि ये इतने सूक्ष्म रावण के बाल बच्चे अभी जिंदा भी हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रावण के इन बाल बच्चों की विदाई कैसे हो और उस विदाई के लिए बाबा ने एक बधाई की बात कही है, वो बधाई कौन सी है। बाबा जब भी बच्चों को देखते हैं तो बच्चों की विशेषता को देखते हैं। हर एक बच्चा अपनी अपनी विशेषता के कारण अपनी अपनी सेवा में संलग्न है। इस अलौकिक जीवन, अलौकिक ब्राह्मण जीवन की नवीनता यही है कि कोई भी बच्चा विशेषता के बिना नहीं है, और बाबा को अपने हर बच्चे की विशेषता पर नाज है। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा को नाज है, ऐसे आप बच्चों को नशा होना चाहिए। किस बात का? अपनी रूहानियत का, अपनी अलौकिकता का, और अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप का, क्योंकि जहां नशा होता है वहां कमजोरियों की विदाई हो जाती है। तो बाबा ने कहा कमजोरियों की विदाई करने के लिए जैसे नया साल आया तो हम एक दो को बधाई देते हैं, संगम युग तो हर दिन नया है, तो हर दिन खुद के विशेष होने की और दूसरों को भी विशेषता संपन्न होने की बधाई देते रहो। तो जब एक दो को ये बधाई देंगे तो बाबा ने कहा कमजोरियां विदाई ले लेंगी। कौन कौन सी कमजोरियों की बाबा ने चर्चा की? मुख्य रूप से तो हम पांच विकारों की बात करते हैं। बाबा ने कहा ये तो मोटे तौर पे मर गए, लेकिन जो नहीं मरे वो कौन है? तो सबसे पहले बाबा ने चर्चा की लोभ की। लोभ तो खत्म हो गया, लेकिन लोभ का एक सूक्ष्म रूप है जिसको बच्चे कहते हैं आवश्यकता। लेकिन बाबा ने कहा आवश्यकता की भी तो लिमिट होती है ना, अगर लिमिट को क्रॉस कर जाए आवश्यकता तो वो भी लोभ का रूप बन जाती है। लेकिन होता क्या है कि आवश्यकता आवश्यकता कहते कहते हम कब इच्छाओं के दलदल में फंस जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं पड़ता। इच्छा और आवश्यकता में बहुत थोड़ा सा अंतर है। एक ऐसा पतला जीना पर्दा दोनों के बीच में है कि व्यक्ति कब आवश्यकता की स्फीयर पार करके इच्छाओं के स्फीयर में प्रवेश कर जाता है उसको खुद भी पता नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक आंगन है, खुला आंगन है और उसके चारों तरफ दीवार है और उस दीवार पर एक पक्षी आके बैठता है। आंगन के बीचों बीच एक सेब रखा है, एप्पल। अब पक्षी की नजर उस एप्पल पर पड़ती है, उसको भूख लगी है, वो एप्पल के नजदीक आता है, चोंच मार के खाता है, उसका पेट भर जाता है और वो उड़ जाता है। तो ये क्या थी पंछी की इच्छा या आवश्यकता? आवश्यकता थी, भोजन हमारी आवश्यकता है। लेकिन अगले दिन मान लीजिए हमने दो सेब रखे, एक पिंजरे में रखा और एक खुला रखा। अगले दिन भी पंछी आया और पंछी ने जो खुला सेब था उसको चोंच मार के खाया, पेट भर गया। अब उसको क्या करना चाहिए? उड़ जाना चाहिए, लेकिन वो उड़ा नहीं। क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि जो पिंजरे में एप्पल पड़ा है उसको वो घूर घूर के देख रहा है, पिंजरे के चारों ओर फुदक रहा है, कभी पिंजरे की सलाखों पे चोंच मार रहा है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है। आवश्यकता पूरी होने के बावजूद अगर वो एप्पल के साथ अटैच है तो ये क्या है? ये उसकी इच्छा है, ये लालसा है, ये तृष्णा है, ये आकर्षण खिंचाव है। और यही खिंचाव उसको बंदी बनाएगा, क्योंकि जब वो फुदक रहा है तो उसे एक बच्चा भी पकड़ सकता है, कोई बड़ा जानवर भी उसे पकड़ सकता है, मालिक आके उसे पकड़ सकता है। अगर वो खाके उड़ जाए तो सब बंधनों से मुक्त। तो बाबा ने कहा ये लोभ का जो सूक्ष्म रूप है आवश्यकता, मुझे इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी जरूरत है, मेरे पास इस रंग की ये चीज नहीं है, उस रंग की ये चीज नहीं है, ये तो नया डिजाइन है, ये डिजाइन तो मेरे पास है ही नहीं, ये डिजाइन भी होना चाहिए, ये कलर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार आवश्यकता करते करते हम भी उसके चंगुल में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम अब जाने वाले हैं इस रंगमंच से, हमारा जीवन साधनामय है। बाबा ने हमें सिखाया है अपने लिए कम से कम, कितने कम से कम में हम गुजारा कर सकते हैं, हमारी वो फिलॉसफी होनी चाहिए। दूसरों के लिए अधिक से अधिक पर अपने लिए कम से कम। फिर बाबा ने एक दूसरे विकार की चर्चा की, काम विकार। बाबा ने कहा कि काम विकार को सबने जीत लिया है, सब ब्रह्मचारी है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी किसी किसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्नेह हो जाता है। बाबा ने कहा स्नेह ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ये ठीक नहीं है। और ये एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है, इसके लिए अभी एक मुरली चली थी 29 तारीख संडे, कर्मातीत अवस्था वाली 27/3/1985 की मुरली थी वो, जिसमें बाबा ने कहा था कि मोटे बंधनों को तो बच्चों ने काट दिया है, लेकिन कई सूक्ष्म बंधन और सूक्ष्म रस्सियां हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे आजकल के वैज्ञानिक भी किसी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए पावरफुल ग्लास को यूज करते हैं, साधारण ग्लास से वो चीज दिखाई नहीं देती। ऐसे ही उन सूक्ष्म बंधनों को, सूक्ष्म रस्सियों को जानने के लिए भी महीन बुद्धि या बहुत सूक्ष्म परख शक्ति चाहिए, जिसके बिना उनको परख नहीं सकते। और उसमें बाबा ने पहली जो चर्चा की थी वो इसी लगाव की चर्चा की थी। कई बार कई आत्माओं से थोड़ा एक्स्ट्रा लगाव हो जाता है, और लगाव क्यों होता है उसके बाबा ने 5 कारण बताए थे। पहला कारण सेवा में साथी है, सेवा में बहुत सहयोगी है। दूसरा कारण सेवा की वृद्धि के निमित्त है। तीसरा कारण स्वभाव संस्कार से मेल खाता है। और चौथा कारण बाबा ने बताया था कुछ एक्स्ट्रा मदद करता है। और पांचवा कारण बताया था किसी ना किसी बात में स्तुति महिमा उस व्यक्ति की है, यानी कि वो विशेषता संपन्न है, उसमें कोई गुण है, उसके उस गुण के कारण उससे थोड़ी लगाव है। बाबा ने कहा इन 5 बातों के कारण किसी आत्मा की तरफ विशेष झुकाव हो जाता है। सहयोग लो, सहयोग दो, विशेषता देखो, उस विशेषता का यूज करो, लेकिन जो एक्स्ट्रा है, झुकाव है, उसकी गिनती लगाव में हो जाती है। फिर मन में एक संकल्प आता है कि इसी से ही, बाबा ने कहा ये ही शब्द गड़बड़ करता है, जहां ही आता है समझो दाल में कुछ काला है, ये हीनता की भावना पैदा करता है। इसी से ही बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही बात करना अच्छा लगता है, इसी से ही सेवा में सहयोग लेना अच्छा लगता है, इसी का ही योग अच्छा लगता है। बाबा ने कहा ये ही शब्द क्यों, अच्छा है तो सबका अच्छा है। और फिर बाबा ने कहा कि जब झुकाव हो जाता है तो क्या होता है कि कोई परिस्थिति आई तो सबसे पहले वो व्यक्ति याद आता है, बाबा सेकंड नंबर में याद आएगा, वो पहले नंबर में याद आएगा, और बुद्धि उसको अपना सहारा समझने लगती है। बाप के सहारे से किनारा हो जाता है, बुद्धि उसको अपना सहारा बना लेती है, और जितनी देर 2-4 मिनट उसको सहारा बनाया, बुद्धि उसकी याद में लगी रही, इतनी देर में बाबा से किनारा हो जाता है। और जब एक बार लिंक टूट जाता है तो दोबारा लिंक जोड़ने में फिर बहुत समय लगता है। सहयोग लेना एक चीज है, सहारा बनाना बिल्कुल दूसरी चीज है। जैसे अपन भवन बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो लकड़ी की लंबी लंबी जो बल्ली होती है ना, उनसे छत को टिकाए रखने का सहयोग लेते हैं। लेकिन वो सहारा नहीं होता, सहयोग होता है। 10 दिन में 15 दिन में महीने में उनको हटा देते हैं और छत अपने आप समर्थ हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। अगर हम उन बल्लियों को सहारा बना लें, जीवन भर वो छत से लगी ही रहे तो कैसा होगा। तो जीवन में सहयोग देने की छुट्टी है, लेकिन किसी को सहारा नहीं बनाना। सहारा केवल एक बाबा है, सहयोग लो और भूल जाओ, सहयोग लो और न्यारे हो जाओ। लेकिन अगर सहारा बना लिया तो कभी न्यारे नहीं हो सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये सूक्ष्म रूप है, फिर बार बार चिंतन करने से वो सूक्ष्म धागा जुट जाता है, सूक्ष्म धागा फिर मोटे रस्से में बदल जाता है, फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और आपके और बाप के बीच में अगर कोई आ जाता है तो ये भी सूक्ष्म पाप हो जाता है। तो ये बाबा ने दूसरे विकार का सूक्ष्म रूप समझाया, एक सहारा, एक बल, एक भरोसा। कोई भी बात हो तो सबसे पहले बाबा याद आए। साकार बाबा के जीवन में दादियां सुनाती हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आई तो बाबा हमेशा सबसे पहले शिव बाबा को याद करते थे, न धन बल, न जन बल, न शारीरिक बल, लेकिन बाबा कहते थे शिव बाबा को याद करो सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे साकार बाबा के जीवन में एक बल एक भरोसा था, मम्मा के भी जीवन में एक बल एक भरोसा था, हमारी दादियों ने भी एक बल एक भरोसा ये पाठ पक्का किया। तो ऐसे हम बच्चों को भी कितने से कितनी बड़ी परिस्थिति आए लेकिन एक बल एक भरोसा का पाठ पक्का रखना है। और उसके बाद एक तीसरे बच्चे की बाबा ने चर्चा की, वो बच्चा है क्रोध का बच्चा। क्रोध को तो छोड़ दिया, क्रोध किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्रोध से तो सबको नफरत हो गई है। अभी जो वीडियो से हमने बाबा की मुरली सुनी उसमें भी बाबा ने एक सवाल पूछा कि क्रोध करके आपने कितनों को ठीक किया, गिनती बताओ। वास्तव में क्रोध वाली जो दवा है ना, वो एक्सपायरी वाली दवा है। एक्सपायरी वाली दवा को कितनी बार भी खाओ, बार बार खाओ, रोज खाओ, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि दवाई बिगड़ चुकी है, खराब हो चुकी है। डॉक्टर से तो हम एक्सपायरी वाली दवा लेते नहीं है, अगर उसकी दवा काम ना करे तो उसको वापस लौटा देते, भैया तुम्हारी दवा किसी काम की नहीं है, 10 डोज खा लिए, खांसी जरा ठीक नहीं हुई। तो जो दवा काम नहीं कर रही है उसको बार बार क्यों खाती। तो एक क्रोध तो छोड़ दिया सबने, सबको पता है क्रोध एक्सपायरी वाली दवाई है, नहीं खानी। लेकिन इसका एक बच्चा है, और आपको याद होगा एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे सांप अच्छा नहीं लगता पर सांप का बच्चा बहुत अच्छा लगता है, बिच्छू अच्छा नहीं लगता, बिच्छू का बच्चा बहुत अच्छा लगता है। बच्चा किसी का भी हो, शेर से तो डरेंगे पर शेर का बच्चा देख के बड़े खुश होंगे। तो ऐसे ही क्रोध से तो भय लगता है पर क्रोध के बाल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्रोध के कौन से बच्चे की बाबा ने चर्चा की, बाबा ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का कोई संस्कार देख करके ज्ञान स्वरूप की स्थिति से आत्मा नीचे आ जाती है और फिर उससे किनारा करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको देख करके अवस्था ऊपर नीचे होती है। और फिर रॉयल भाषा में बोलते क्या हैं कि किसी को देख करके अवस्था ऊपर नीचे करने से तो अच्छा है उसे किनारा ही करो। तो ये सूक्ष्म घृणा का भाव है। न्यारा होना अलग बात है और किनारा करना अलग बात है। प्यारे बनकर के न्यारे हो जाओ वो ठीक है, लेकिन घृणा भाव से न्यारा होना वो ठीक नहीं है। बाबा ने कहा जैसे क्रोध अग्नि जलाती है, ऐसी ये घृणा की सूक्ष्म अग्नि भी अंदर ही अंदर जलाती है। इसलिए इसका परिवर्तन करो, अपनी शुभ भावना शुभ कामना छोड़ो नहीं, नहीं तो अंदर ही अंदर संकल्प चलता है ये है ही ऐसा, ये तो कभी बदलने वाला है ही नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे शब्द संकल्प करके उसको श्रापित नहीं करो, न्यारे बेशक रहो लेकिन शुभ भावना और शुभ कामना जरूर रखो। तो ये जो घृणा है ये भी क्रोध का सूक्ष्म रूप है, रोब भी क्रोध का सूक्ष्म रूप है। ऊपर से बोल नहीं सकते कई बार, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते हैं, ये भी क्रोध का सूक्ष्म रूप, अंदर ही अंदर संकल्प चलाते हैं। और फिर बाबा ने कहा मोह, मोह का सूक्ष्म रूप क्या है? अच्छा लगता है, ये वस्तु अच्छी लगती है। मोह वस्तु से भी होता है, व्यक्ति से भी होता है। व्यक्ति की चर्चा तो हमने की, लेकिन अभी वस्तु की चर्चा करेंगे। ये चीज अच्छी लगती है, ये वस्तु अच्छी लगती है। बाबा ने कहा अच्छा लगे तो सब कुछ अच्छा लगे, आठ चक्कियों वाला कपड़ा भी अच्छा लगे और बढ़िया कपड़ा भी अच्छा लगे, 36 प्रकार का व्यंजन भी अच्छा लगे और सूखी रोटी गुड़ के साथ वो भी अच्छी लगी। ऐसे नहीं कि यही मिले यही चाहिए। बीमारी है उसके लिए कोई सेल्वेशन है वो अलग बात है, लेकिन अपनी चाहना से कोई सेल्वेशन चाहते हैं तो वो मोह का रूप हो जाता है। जैसे सुनाते हैं कि एक बार एक राजा ने जिसको कोई संतान नहीं थी बहुत विचार किया कि मैं अपना वारिस किसको बनाऊं। विचार करते करते उसको एक अच्छी युक्ति समझ में आई। उसने ऐलान करवा दिया कि कल सुबह 8 से 9 बजे के बीच में मेरे बगीचे वाले महल में जो भी मुझे आके सबसे पहले मिलेगा اسے میں اپنا وارث بنا لوں گا. یہ گھوشنا سن کر کے کئیوں کو تو وشواس ہی نہیں ہوا. اتنا سرل ہے کیا راجا کا وارث بننا؟ دوسرے کچھ لوگ تھے, انہوں نے سوچا چل کے دیکھ لیں گے اپنا جاتا کیا. تیسرے کچھ لوگ تھے وہ دڑھ سنکلپ والے تھے کہ ہم کو تو جانا ہی ہے. اگلی صبح ہوئی تو راجا کے بگیچے والے محل کے گیٹ پہ لمبی لائن لگ گئی. ان میں پہلی پرکار والے تو آئے ہی نہیں تھے, دوسرے اور تیسری پرکار والے تھے. پہرے دار گیٹ کھول کے ایک ایک کو اندر بگیچے میں بھیج رہے تھے, اور بگیچے سے ہو کے پھر محل تک جانا تھا. تو جیسے ہی وہ بگیچے میں پرویش ہوئے تو کیا دیکھا, اتنے سگندھت پھول ہے اور اتنی سندر سگندھی آ رہی ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بڑا آرام ملا. اور وہیں بگیچے کے پھولوں کو سونگھنے میں, ٹھنڈی ہوا کا آنند لینے میں وہیں بینچوں پہ بیٹھ گئے. سوچا ابھی تو گھنٹہ پڑا ہے, چلے جائیں گے. کچھ لوگ اس ٹھنڈی ہوا کا آکرشن چھوڑ کے تھوڑا آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت پرکار کے ویجن سجے ہوئے ہیں اور چھوٹ ہے سب کو کھانے کی. ایسے ایسے ویجن جو انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے, سنے بھی نہیں تھے, ان کی بھی خوشبو آ رہی تھی. اب صبح سے لائن میں لگے تھے, بھوکے بھی تھے, تک بھی گئے تھے, تو پلیٹیں اٹھائی, ویجن ڈالے, ایک کھائیں, دوسرا اس سے بھی سوادشٹ, تیسرا اس سے بھی سوادشٹ. تو سوچا ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے محل میں جانے کا. کھاتے رہے. کچھ لوگ وہاں سے آگے گئے تو دیکھا بہت ہی سندر سندر وستر ہے, سونے کی جری ایسے چمک رہے ہیں. تو سب پہن پہن کے دیکھنے لگے, کیسا لگ رہا ہوں میں پہن کے, کیسا لگ رہا ہوں. انیک پرکار کے تھے, ایک پہنے اتاری پھر دوسرا پہنے. انہوں نے بھی سوچا ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, پہنچ جائیں گے محل میں. کچھ اسی میں لگے رہے, کچھ دو چار تھے جو اور آگے نکلے. اور جب آگے نکلے تو دیکھا کہ اتنے چمکدار ہیرے موتی مانک جواہر بھرے پڑے ہیں, ان کی تو آنکھیں چوندھی آ گئی. نہ کوئی روک, نہ کوئی ٹوک, نہ کوئی پہرے دار, اتنا مرضی اٹھاؤ جیبوں میں ڈالو تو مٹھیاں بھر بھر کے لوگ اپنی اپنی جیبیں بھرنے لگے. ایسا موقع پھر کب ملے گا, ایسی کھلی چھوٹ پھر نہیں ملے گی. یہ موقع آیا اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. کیول ایک ہی بچا جو وہاں سے آگے گیا, راجا کے محل میں گیا, راجا سے ملا, اور راجا نے کہا ہاں تم میرے سچے وارث ہو, کیونکہ تم کو کوئی اچھا نہیں, باقی سب اچھاؤں میں پھنس گئے. کسی کو سگندھ نے پھنسا لیا, کسی نے کسی کو جیب کے سواد نے, کسی کی آنکھیں سندر سندر ڈریس میں ڈوب گئی, اور کسی کو ہیرے موتی کے آکرشن نے کھینچ لیا. کیول ایک ہی بچا جو اپنی منزل پر پہنچا. تو ہماری بھی ایک لمبی یاترا ہے, और یاترا کے اس چھور پہ بابا کھڑا ہے اور بابا کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ میرے نزدیک آؤ تو میں تم کو اپنا وارث بناؤں لیکن بچے وارث بنتے بنتے کئی سوکشم پرلوبھنوں میں پھنس جاتے ہیں کسی کے کان بندھن ڈال دیتے ہیں کسی کی آنکھیں کسی کی جیوا کسی کو سپرش اور ان میں بندھے بندھے وہ اپنا لکشے بھول جاتے ہیں کہ میں کیوں آیا تھا مجھے کس سے ملنا ہے بابا کہتے ہیں تم نے کسی وستو کا سودا نہیں کرنا تھا لیکن وستوؤں کے مالک کا سودا کرنا تھا لیکن ہم تو وستوؤں کا ہی سودا کرنے میں لگ گئے وستوؤں کے مالک کو بھول گئے مالک اگر مل جائے تو ساری وستوئیں ہماری تو یہ جو موہ ہے وستوؤں سے موہ پدارتھوں سے موہ ویبھووں سے موہ اس کے کارن بھی یاترا رک جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے منزل دور نظر آنے لگتی ہے تھکان ہو جاتی ہے سمے ویرتھ چلا جاتا ہے تو یہ بھی ایک سوکشم وکار ہے بابا اور ہمارے بیچ میں موہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک وکار اور بچ گیا کون سا اہنکار اہنکار کو بچوں نے جیت لیا لیکن اس کا بھی ایک سوکشم روپ ہے سوکشم روپ یہ ہے کہ یہ میری وشیشتا ہے میری وشیشتا کو کام میں کیوں نہیں لگایا گیا میری وشیشتا کو یوز کیوں نہیں کیا گیا میری کتنی بڑی وشیشتا ہے کتنے لوگ میری مہیما کرتے ہیں لیکن ان کو تو میری وشیشتا دکھائی نہیں دیتی ہے انہوں نے مجھے کبھی آگے نہیں کیا کبھی ذکر بھی نہیں کیا تو بابا نے کہا کہ جب آپ کا الوکک جنم ہو گیا تو یہ الوکک جیون کس کا ہے یہ تو باپ کی دین ہے اور اس الوکک جیون میں اگر کوئی گن ہے کوئی وشیشتا ہے کوئی کلا ہے خوبی ہے کوئی مہانتا ہے کوئی ہنر ہے کوئی ایکسٹرا آرڈینری یوگیتا ہے تو وہ کس کی دین ہے جس نے نیا جیون دیا اسی نو جیون داتا کی وہ دین ہے اگر وہ یہ نیا جیون نہ دیتا تو وہ دین کہاں سے آتی اس نے نئے جیون کا وردان دیا اور اس وردان کے ساتھ ساتھ اس جیون میں انی خوبیاں بھر دی وہ تو ہے ہی شاہ خوبا مانا خوبیوں کا شہنشاہ تو وہ خوبیوں کا شہنشاہ اپنے بچوں میں خوبیاں بھر دیتا ہے جیرو کو ہیرو بنا دیتا ہے لائق بنا دیتا ہے مہان بنا دیتا ہے بڑا ادار دل ہے جیسے ہی اس کی گود کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنے گیان گن شکتیوں کا ورثہ اسی دن دے دیتا ہے اور ان کی بدولت ہم وشیش آتما بن جاتے ہیں بھکتی میں بھی کہتے ہیں پنگو لنگیتے گریم مکم کرو پی واچالم ارتھات جب اس کی کرپا ہوتی ہے تو لنگڑا پہاڑ کو لانگ جاتا ہے اور گنگا بولنے لگتا ہے سب کچھ اسی کی کرپا سے ہوتا ہے تو ہم پر بھی اس کی کرپا ہوئی اس کی دیا ہوئی اس کی درشٹی پڑی اس نے ہم پہ مہر کی اور ہمارے میں کوئی خوبی آ گئی گن آ گیا کلا آ گئی لیکن اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میری ہے, یہ تو میری خوبی ہے, یہ تو میری وشیشتا ہے, یہ تو میرا گن ہے. تو بابا نے کہا یہ میرا کہاں سے آ گیا, یہ میری نہیں ہے, یہ اس داتا کی دین ہے. اور جو دینے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں اور کیسے یوز کرنا ہے. جو دے سکتا ہے وہ یوز نہیں کرے گا کیا؟ دینے والا بھی وہی ہے, یوز کرنے والا بھی وہی ہے. نہ کسی انسان نے دی اور نہ کوئی انسان یوز کرے گا. انسان تو کیول نمت بنے گا لیکن کرن کراونہار وہی ہے. اس لیے میری نہیں تیری ہے, تو جانے تیرا کام جانے. بابا نے کہا جب میری کہتے ہیں تو وری آ جاتی ہے. وری مانا چنتا. میری کا اور وری کا آپس میں کنیکشن ہے. تیرا کہتے ہیں, تیری کہتے ہیں تو وری چلی جاتی ہے, میری کہتے ہیں تو وری آ جاتی ہے. اس لیے بابا نے ایک مرلی چلائی تھی, تھوڑا سا پریورتن کرنا ہے بس, زیادہ پریورتن نہیں کرنا. پریورتن شکتی کو بھی یوز کرو پر بہت تھوڑا سا یوز کرنا ہے. میں کو تے میں بدلنا ہے بس, میری نہیں تیری. تو جیسے ہی تیری کہتے ہیں ایگو چلا جاتا ہے, ابھیمان چلا جاتا ہے, نمرتا آ جاتی ہے, جھکنا آ جاتا ہے, مولڈ ہونا آ جاتا ہے, سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا آ جاتا ہے, راضی ہوں تیری رجا میں یہ بھاونا آ جاتی ہے. بابا نے کہا تین شبد, ہری وری اور کری. ہری مانا جلد بازی, جلد بازی نہیں کرو. کئی بچے جلدی جلدی کام تو کرتے ہیں لیکن ایک کام کرتے ہیں ایک بگاڑ بھی دیتے ہیں, بیلنس برابر رہتا. پھر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بگڑ کیسے گیا, کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں مجھے کتنی جلدی تھی, آپ دیکھ نہیں رہے ہو میں کتنی جلدی میں. تو جلدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی کا مطلب ہوتا ہے کم سمے میں کام کرنا, نہ کہ کام بگاڑنا. تو ہری نہیں کرنا, کیونکہ ہر کام اپنے سمے پر ہوتا ہے, اپنی سپیڈ سے ہوتا ہے. آپ کتنی بھی جلدی کرو پھول تو اپنے سمے پہ کھلے گا, پھل تو اپنے سمے پہ لگے گا. کئی لوگ باہر سے آتے ہیں گھر میں آ کے بہت جلدی مچاتے ہیں, ابھی ابھی بھوجن چاہیے. بھوجن تو سمے پر ہی پکے گا, روٹی جتنی دیر میں بلتی ہے توے پہ پکتی ہے اتنا ٹائم تو لے گی. ہم بہت جلدی بھی کریں تو اس کا سمے کم تھوڑی ہو جائے گا. ٹرین نہیں آتی ہے کئی بار تو لوگ بہت اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. یہ دنیا ہی ایسی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر ہم جلد بازی مچائیں گے تو کیا ہوگا؟ باہر تو کچھ نہیں بدلے گا لیکن ہماری بھیتر بہت ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. کیونکہ بیماریوں کا ایک کارن جلد بازی بھی ہے. تو ہری, اس کے بعد وری. چنتائیں باپ کو دے دو, سارے بوجھ باپ کو دے دو, ہلکے ہو جاؤ. ایک بار ایک ویکتی تھا بہت غریب, وہ کہیں پہ کام ڈھونڈنے گیا. तो एक बड़े व्यापारी ने उसको लकड़ी चीरने का काम दिया। अब जैसे ही लकड़ी चीरना शुरू किया तो उसकी आरी टूट गई। बेचारा उदास होके बैठ गया, अब क्या होगा। इतनी देर में व्यापारी आया, पूछता है भाई तुम बैठे क्यों, काम क्यों नहीं कर रहे। उसने कहा साहब मेरी आरी टूट गई। तो व्यापारी ने कहा तो आज की तो दिहाड़ी तुम्हारी गई, पर ऐसा है कि जिधर तुम्हारा घर है मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं चलता चलता तुम्हारे घर के सामने तुमको छोड़ दूंगा, कल आरी ठीक करवा के आ जाना। बोला ठीक है। तो व्यापारी के साथ गाड़ी में बैठ गया। जब उस गरीब आदमी का घर आया, दोनों उतर गए। उस गरीब ने कहा कि साहब मेरे घर में आप अपने चरण रख दो तो घर के लोग कितने खुश हो जाएंगे आपको देख करके। हाँ ठीक है। वो भी गाड़ी से उतर गया, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर के गेट के पास पहुंचे तो गेट के सामने एक बड़ा सा पेड़ था। उस गरीब आदमी ने अपने गले में से कुछ निकाला, गले में था तो कुछ भी नहीं, पर ऐसे लगा जैसे गले में से कुछ निकाला और उस पेड़ की एक शाखा के ऊपर टांग दिया। व्यापारी देख रहा था गले में से कुछ निकला भी नहीं और शाखा पे कुछ टंगा भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या है। और वो कुछ बोला नहीं, अंदर गया तो अंदर उसकी माता थी, बच्चे थे, बीबी थी, सब उसको देख के खुश हो गए। बच्चे उससे लिपट गए, माँ दौड़ के पानी लाई, व्यापारी को बिठाया, उसको बिठाया, वो भी खुश था। थोड़ी देर वो बैठा, पानी वानी पिया और फिर कहता भैया अब मैं चलूंगा, मुझे आगे दूर जाना है। तो वो गाड़ी तक उस व्यापारी को छोड़ने आया। तो व्यापारी कहता है बाकी सब बातें तो मुझे समझ में आई पर एक बात समझ में नहीं आई, तुमने गले में से क्या निकाला और उस पेड़ पर क्या टांगा, कुछ दिख तो रहा नहीं था। उसने कहा साहब ये जो मेरा घर के आगे पेड़ है ना, इसका नाम है वर्री ट्री, चिंता वृक्ष। मैं रोज काम से जब घर लौटता हूं तो काम की जितनी परेशानियां होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, आज भी देखो ना मेरी आरी टूट गई, मेरी दिहाड़ी गई, इतनी बड़ी परेशानी थी, पर मैं उसको घर में नहीं ले जाता, अपने गले में से सारी चिंता की मालाएं निकाल के ना इस पेड़ पे टांग देता हूं और जब अंदर प्रवेश करता हूं तो मुस्कुराता हुआ प्रवेश करता हूं। मेरे परिवार वालों को मेरी चिंता के बारे में क्यों पता पड़े, मेरी चिंताओं से वो क्यों चिंतित हूं, वो क्यों भारी हूं, उन्होंने क्या किया है जो मेरे गमों के कारण वो गमगीन हो, मेरी बातें मैं संभालूंगा। तो मैं जब तक घर में रहता हूं सबके साथ बहुत प्रसन्न चित्त रहता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो चिंताएं पेड़ पे टांग दी तो मैं उनसे लापरवाह हो गया। अगले दिन सुबह उठ के जब अपने काम पे जाता हूं तो वापस गले में पहन लेता हूं, क्योंकि उनका निपटारा भी तो करना है ना, उन चिंताओं को सुलझाना भी है, मैनेज भी करना है, जो काम बिगड़ गए उनको संवारना है। और फिर जब काम धंधे पे रहता हूं तो याद रखता हूं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये बाकी है, ये भी करना है, लेकिन घर में नहीं लेके जाता। तो हम सबको भी ऐसा एक वर्री ट्री बना लेना चाहिए, जितनी भी चिंताएं हैं घर से बाहर ही रहें। लेकिन घर के अंदर हम खुश रहें। बाबा ने हम बच्चों को वर्री ट्री दे रखा है, बाबा ने कहा है सब वर्रीज मेरे पे टांग दो, मुझे दे दो, सारे बोझ मुझे दे दो, और ना केवल घर के अंदर लेकिन घर से बाहर भी प्रसन्न रहो, हर वक्त प्रसन्न रहो। इस नए साल में बहुत सारे होमवर्क के साथ बाबा ने हमको ये वाला होमवर्क भी दिया है कि हमेशा प्रसन्न रहना है। तो हर्री भी नहीं करनी, वर्री भी नहीं करनी, और तीसरी चीज है कर्री। कर्री का मतलब है बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन। इसका भी त्याग चाहिए, क्योंकि योगी को मन की एकाग्रता, मन का संतुलन और एक शक्तिशाली मन चाहिए। तो भोजन जितना सिंपल रहता है उतना उसका मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे बाबा मम्मा का भोजन बहुत सिंपल था, उबले उबले जैसा था, न बहुत तेज मिर्च, न मसाला, न बहुत तेज खटाई। तो करी को भी अवॉइड करना है। सादे जीवन में सब कुछ सादा, खाना भी सादा, पहनना भी सादा, रहना भी सादा। दादी जानकी के तीन मंत्र हैं, सच्चाई, सफाई, सादगी। तो हम बच्चों को भी इसमें दादी को फॉलो करना है। तो ये बाल बच्चों की विदाई इस नए साल में, और जब विदाई हो जाती है तो बधाई तो अपने आप मिल जाती है, क्योंकि विकारों का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। जैसे बाबा कहते हैं कि पवित्रता सभी गुणों का सरताज है। अगर जीवन में मन वचन कर्म की पवित्रता आ जाए तो उसके पीछे पीछे सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। बस एक पवित्रता को दृढ़ता से धारण कर लो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्माचर्य, ब्रह्माचारी, केवल ब्रह्मचारी नहीं, जो ब्रह्मा बाबा का आचरण, उस आचरण को फॉलो कर लो तो बाकी सारे गुण स्वतः आ जाएंगे। अलग अलग पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे गुणों की आपस में यूनिटी है, ऐसे इन विकारों की भी आपस में यूनिटी है। एक आता है तो पीछे लाइन लग जाती है। सूक्ष्म रूप में एक का भी अंश रह गया तो अंश से वंश खड़ा हो जाता है, इसलिए उस अंश को भी मिटाना। जैसे बताते हैं कि एक बार एक सन्यासी था, तो वो एक बहुत घने जंगल में से गुजर रहा था। रास्ते में उसको डाकू मिल गए, तो डाकुओं ने उसको कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो डाकुओं को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा इसी को बांध के ले चलो। तो सन्यासी को बांध लिया और अपने अड्डे पर ले आई। अड्डे पर ले आई तो अड्डे पर आने के बाद उन्होंने शराब पी, नशा चढ़ गया, नाचने लगे, और सन्यासी पर तो गुस्सा आया ही हुआ था कि इसके पास कुछ भी नहीं मिला, आज तो हमारी कुछ आमदनी नहीं हुई। तो सन्यासी को कहने लगे कि देखो, तुम जिंदा रहना चाहते हो ना, तो हमारे साथ शराब पियो और नाचो, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। सन्यासी ने कहा भला मैं शराब कैसे पी सकता हूँ, मेरी तो साधना की जीवन है, पवित्र जीवन है, पवित्र जीवन में ये तो जहर के बराबर है। तो डाकू ने कहा देख लो, जीना चाहते हो ना तो चार में से एक काम करो, चाहे तो शराब पियो, چاہے سامنے بیٹھی گائے ہے اس کو لات مارو، چاہے ہمارے ساتھ ماس کھاؤ، اور چاہے یہ الٹا استری بیٹھی ہے اس کے ساتھ وے بیچار کرو، ایک کام تو کرنا پڑے گا. اب سنیاسی بھول گیا کہ میں کون ہوں، میں کس کا ہوں. جیون کو بچانے کے لیے بھگوان کا بھروسہ چھوٹ گیا، سوچا ایک کام تو مجھے کرنا ہی پڑے گا، شراب پینا تو، گائے کو لات مارنا تو بہت بڑا پاپ ہے، ماس کھانے سے تو دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، بیبی چارج میں تو نرک بھوگنا پڑے گا، تو میں ایسا کرتا ہوں ایک گھٹ شراب پی لیتا ہوں. جیون کو بچانا ہے نا، تو جیون کا موہ آ گیا، ایک گھٹ شراب پی، نشہ چڑھ گیا، اس کے بعد مانگ مانگ کے اور پینے لگا، اور پھر اتنا نشہ چڑھا کہ اس نشے میں گائے کو لات بھی مار دی، اس کے بعد ماس بھی کھایا، بھوک لگائی ناچتے ناچتے، اور اس کے بعد وے بیچار بھی ہوا. تو ایک برائی آئی تو اس کے پیچھے پوری چین آ گئی، پورا کنبا آ گیا، پورا قافلہ آ گیا. کئی بار ہم کہتے ہیں یہ تو تھوڑی سی بات ہے، وہ تھوڑی نہیں ہوتی، وہ ہتھوڑی بن جاتی ہے. اس لیے برائی چنگاری کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی چنگاری بہت بڑی آگ بن جاتی ہے، چھوٹی سی بیماری مہاماری بن جاتی ہے، چھوٹا سا اپرادھ بہت بڑا روپ دھارن کر لیتا ہے، چھوٹی سی کمزوری انیک کمزوریوں کو آکرشت کر لیتی ہے. اس لیے بابا نے کہا اس نئے سال میں بال بچوں کو بھی ودائی دو، بڑوں بڑوں کو ودائی تو دے دی، لیکن انش اور ونش کو بھی ودائی دو، تب سچے ارتھوں میں نئے سال کی بدھائی ہوگی. تو آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت بدھائی. اوشن بابا کے پاس، شیو بابا کے پاس.
बाबा के पास।